গোপীজন বল্লভ গিরিবর ধারি, গোপীজন বল্লভ গিরিবর ধারি, যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন যমুনা তীরাবন চারি, যমুনা তীরাবন চারি, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারি, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারি, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয়, রাধা রমণ হরি গোবিন্দ জয় জয়, গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয়, রাধা রমণ হরি গোবিন্দ জয় জয়, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, জয় জগন্নাথ জগন্নাথ বলদেব জয় সুভদ্রা, নিতাই গৌর হরিবোল 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 হরিবোল, নিতাই গৌর হরিবোল 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 হরিবোল, হরিবোল
ತಾಯಿ ಗೌರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದೇ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಖೀ, ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಲದೇವ್ ಸುಭದ್ರಾ ಮೈ ಖೀ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗಿರಿಧಾರಿ ಭಗವಾನ್ ಖೀ, ವೃಂದಾವನ್ ಧಾಮ್ ಖೀ, ಜಗನ್ನಾಥ ಪರಿಧಾಮ್ ಖೀ, ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಖೀ, ದೀಪದಾನ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಖೀ, ತಾಯಿ ಗೌರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದೇ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯ ಮುದಿರಯೇ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತೀರುತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಟಿಕೀ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತೋ ಆಪ್ ಸಬ್ಕಾ ಇಸ್ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಹಿನೆ ಮೇ ಬುಧವಾರ ಕೇ ಇಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೇ ದುಬಾರಾ ಏಕ ಬಾರ್ ಸ್ವಾಗತ ಹೈ. ಆಜ ದಾಮೋದರ ಮಹಿನೆ ಕಾ 28ವಾ ದಿನ ಹೈ ಔರ್ ಪರಮ ಭಾಗ್ಯ ಸೇ ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ದಿನ ಮೇ ಹಮನೆ ಆರಂಭ ಪ್ರಭಾತ ಜಾಗೃತಿ ಸೇ ಕಿಯಾ ಥಾ. ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲಾ ದಿನ ಶರದ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಾ ದಿನ, ಉಸ್ ದಿನ ಹಮನೆ ಶರದ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಾ ವರ್ಣನ ಕಿಯಾ ಥಾ. ಔರ್ ಆಜ ಹಮ ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಿ ಪಾಸ್ ಮೇ ಹೈ. 28ವಾ ದಿನ ಬುಧವಾರ ಔರ್ 30ವಾ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಜಿಸ್ ದಿನ ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಾ ಉತ್ಸವ ಹೈ. ತೋ ಉಮ್ಮೀದ್ ಹೈ ಕಿ ಆಪ್ ಸಬ್ ಲೋಗನೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಕಾ ವ್ರತ ಬಡೆ ಪ್ರೇಮ ಸೇ ನಿಭಾಯಾ ಹೋಗಾ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಕಾ ಮಹಿನಾ ಇತನಾ ವರದಾನಶೀಲ ಹೈ, ಇತನಾ ಪವಿತ್ರ ಹೈ, ಇತನಾ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಹಮಾರೇ ಲಿಯೇ ಹೈ ಕಿ ಕೇವಲ ಇಸ್ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಹಿನೆ ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಕೆ ಹರ್ ಕ್ಷಣ ಕಾ ಉಪಯೋಗ ಕರ್ಕೆ ಹಮ್ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಬಹುತ್ ಸಹಜತಾ ಸೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ. ಹಮಾರೇ ಲಿಯೇ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ ಕಿ ಶುರುವಾತ್ ಮೇ ಹಮ ಬಡೆ ಉತ್ಸಾಹ ಉತ್ಸುಕ ರಹತೆ ಹೈ, ಬಾದ್ ಮೇ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಹಿನಾ ಭಿ ರುಟೀನ್ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ. ರುಟೀನ್ ಉತ್ಸವ ಜಬ್ ಹೋತಾ ಹೈ ತೋ ಉತ್ಸವ ಜಬ್ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ತಬ್ ಭಿ ಬಹುತ್ ಆನಂದ ಆತಾ ಹೈ, ಲಗತಾ ಹೈ ಉತ್ಸವ ಕ್ಯೂ ಸಮಾಪ್ತ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ. ಲೇಕಿನ್ ಅಗರ್ ಉತ್ಸವ ರೋಜ್ ಹೋಗಾ ತೋ ಫಿರ್ 10 ದಿನಕ್ಕೆ ಬಾದ್ ಆಪ್ ಭಿ ಉಸ್ಕೋ ಜರಾ ಬೋಲೇಂಗೇ ಠೀಕ್ ಹೈ ಅಭಿ ಕಲ್ ಭಿ ಥಾ ಆಜ್ ಭಿ ಹೈ ಪರ್ಸೋ ಭಿ ಹೈ ತೋ ಆಜ್ ಶಾಯದ್ ಠೀಕ್ ಹೈ. ಈ ಸುಂದರ ಬಾತ್ ಉದರ್ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ ಮೇ ಹುಯಿ ಥಿ ಕಿ ಲಗ್ತಾ ಹೈ ಕಿ ಯೇ ಜೋ ಉತ್ಸವ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ ಮೇ ಯಾತ್ರಾ ವಾಲಾ ಉತ್ಸವ 7 ದಿನ ತಕ್ ನಹೀ 10 ದಿನ ತಕ್ ಚಲಾ, ಇತನಾ ಆನಂದ ರಹಾ. 7000 ಲೋಕ ಪ್ರಸಾದ ಪಾ ರಹೇ ಹೈ, 7000 ಲೋಕ 8 ಗ್ರೂಪ್ ಮೇ ವಿಭಾಜಿತ ಹೋಕರ್ 8 ಜಗ ಪರ್ ದರ್ಶನ್ ಕರ ರಹೇ ಹೈ, ಸ್ಥಲ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಸುನ್ ರಹೇ ಹೈ, ಫಿರ್ ಲೌಟ್ ಕೆ ಆ ರಹೇ ಹೈ, ಫಿರ್ ಪ್ರಸಾದ ಲೇ ರಹೇ ಹೈ, ಫಿರ್ ಏಕ್ ದೂಸರೆ ಕಾ ಸಂಗ ಕರ ರಹೇ ಹೈ, ಫಿರ್ ಶಾಮ್ ಕೋ ಇತನಿ ಬಡೀ ಉತ್ಸುಕ್ ಆತುರ್ ಲಾಲಸಾಮಯೀ ಸಭಾ ಮೇ ಬೈಠ ಕರ್ 3-3 ಘಂಟೆ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಉತ್ಕಟ ಲೀಲಾ ಕಾ ಶ್ರವಣ ಕರ ರಹೇ ಹೈ. ಪರ್ವಣಿ ಕಹತೆ ಮರಾಠಿ ಮೇ ಉಸ್ಕೋ, ಪರ್ವಣಿ ಮತಲಬ್ ಅಲಭ್ಯ ಲಾಭ. ಐಸಾ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರ್ನಾ, ಐಸೆ ಭಕ್ತ ಜೊ ಇತನೆ ಆತುರ ಹೈ, ಜೊ 3-3 ಘಂಟಾ ಏಕ ಜಗ ಬೈಠ ಕರ್ ಕಥಾ ಸುನ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ, ಐಸೆ ಲೋಗೋ ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಬೈಠ ಕರ್ ಕಥಾ ಸುನ್ನಾ. ಔರ್ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಜೊ ಬಡೇ ಹೀ ಪ್ರೇಮ ಸೇ ಗೌರ್ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕಿ ಲೀಲಾ ಕಾ हृदय से भाव से वर्णन कर रहे हैं। ऐसे वातावरण में उपस्थित रहना भी परम भाग्य की बात है। तो ये केवल उत्सव नहीं है, परम उत्सव है ये। हर प्रकार से भक्तों के जीवन में क्या क्या आनंद प्राप्त हो सकता है, उस हर प्रकार का आनंद परमोच्च मात्रा में वहां पर नियोजित था सबके लिए। कुछ भी लीजिए आप, कीर्तन लीजिए, दामोदर अष्टकम लीजिए, दीपदान लीजिए, कथा श्रवण कीजिए, प्रसाद का आयोजन कीजिए, दर्शन महात्म्य दर्शन करना, दर्शन की कथा सुनना, स्थल महात्म्य, भक्तों से आदान प्रदान करना, हृदय की बातें करना। और आपको क्या चाहिए, आपको अगरबत्ती चाहिए वो भी स्टॉल लगा हुआ है, आपको क्या पुस्तक चाहिए वो भी अवेलेबल है, हाँ जगन्नाथ का प्रसाद चाहिए उसका भी एक स्टॉल अवेलेबल है। कृष्ण कॉन्शियसनेस में जितने प्रकार के आनंद आप ले सकते हो, उस हर प्रकार के आनंद प्रचुर मात्रा में वहां पर उपलब्ध था। समुद्र अवेलेबल है। तो एंड में जब वो उत्सव समापन हो रहा था उसका, तो एक भक्त स्टेज पर थे, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि क्यों इसको समाप्त करें, इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, इतना आनंद प्राप्त हो रहा है कि लगता है समाप्ति ना हो। वही प्रसाद 6000 लोगों का रोज बनता रहे, वही लोग रोज जाते रहे घूमने के लिए, आते रहे शाम को कथा सुनते रहे, डांस करते रहे पौना घंटे के लिए, फिर आधा घंटे के लिए दामोदर महीने का अष्टकम गाते रहे, दीपदान करते रहे, फिर अगले दिन जल्दी उठकर जप करने के लिए आना है ये सोचकर सो जाएं। फिर उन्होंने कहा कि ये समाप्त होना ही सही है, क्योंकि समाप्त होगा तो उसके लिए हैंकरिंग यानी आतुरता अगले के लिए, वो कहते ना हैंकरिंग को क्या कहते हैं, तड़पना, उसके लिए जो हमने भी समाप्त किया है उसके लिए याद करते रहना, वो बढ़ेगा, उत्सुकता बढ़ेगी, लालसा बढ़ेगी, तो अगले उत्सव में हम अच्छे चेतना में अच्छे भाव में दोबारा सम्मिलित हो सकते हैं। और यही उत्सव अगर चलता ही रहा तो फिर वो रूटीन हो जाएगा, नित्य मात्र का हो जाएगा, फिर जो उत्साह से भाग ले रहे थे वो उत्साह भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए रोज लड्डू खाएंगे ना तो रोज फिर लड्डू का फिर वैल्यू कम हो जाता है, कभी कभी लड्डू मिलेगा तो फिर बहुत कीमत होती है उसकी। इसलिए हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम कोई भी मूल्यवान वस्तु है ना, वो हमारा मनुष्य का एक कलयुग का स्वभाव है कि हर एक सर्वोच्च मूल्यवान वस्तु को भी हम कुछ समय के बाद सामान्य बना देते हैं अपनी तरफ से। वो वस्तु सामान्य नहीं होती है, वस्तु उतनी मूल्यवान रहती है वो, लेकिन हम उसको अपना अपनी तरफ से अपनी चेतना से उस सामान्य बना देते हैं। जो व्यक्ति हर रोज 15 आइटम खाता है रोज, तो क्या है 15 आइटम में, 25 क्यों नहीं, रोज जो एक ही आइटम खा रहा है उसको लगेगा बाप रे आज कितना बड़ा फिस्ट खाया मैंने, कितना भाग्य था मेरा आज इतने बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाए मैंने। लेकिन रोज खाने वाले को पूछो, वो बहरीन में जो राजा है ना उसके पास 250 देश के कुक काम करते हैं, 250 देश के, और 250 देश के ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर रोज बनाने का इंतजाम होता है। लेकिन कई बार राजा केवल एक पपीता का टुकड़ा खा के चला जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। वो कह रहे हैं कि सर स्विस ब्रेकफास्ट दूँ आपको, क्या आज सऊदी का दे दूँ कि रशियन दे दूँ कि ब्रिटिश का दे दूँ कि इंग्लैंड का दे दूँ, तो कहेगा कि मुझे 2 पपीता और 2 कलेंगड़ दे देना। चला जाएगा निकल के। मतलब यू नो, अभी आपको अगर बोलेंगे तो आप बोलेंगे क्या सोचो अभी, क्या अभी भूख भी लगने से, अभी अच्छी तरह भूख लग के आऊँगा तो अच्छा तरह खाऊंगा, एक ही बार मौका मिल रहा है, ऐसा आप प्लान करके जाएंगे। लेकिन जो रोज खा रहा है वो बोल रहा है क्या अभी पपीता ही अच्छा है। तो सर्वोच्च वस्तु जो है ना वो भी सामान्य कर देते हैं हम उसको। वैसे ही कार्तिक महीना है, तो चैलेंज क्या है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो उत्साह हमने अपनाया था कार्तिक महीने के प्रति, दीपदान के प्रति, व्रत के प्रति, भगवान नाम के प्रति, क्या हम 30वें दिन भी उसको वैसे ही रख सकते हैं क्या, एक प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कि क्या हम हजारों गुना अधिक मात्रा में 30वें दिन में उसका उत्साह बना सकते हैं क्या, इंक्रीजिंग डे बाय डे। जो एक दिन में, पहले दिन में एक अमाउंट में था, एक मात्रा में था, वो दूसरे दिन में दुगना हो गया, दूसरे दिन में तिगुना हो गया, चौथे दिन में चौगुना हो गया, और आज वो हजारों गुना, लास्ट डे में तो ज्योति हमारी एकदम प्रज्वलित होकर परमोच्च मात्रा में आज उत्साह है हमारा, क्योंकि 28वां दिन है, 29वां दिन है, 30वां दिन है। वो एक्चुअली स्पिरिचुअल लाइफ है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का लक्षण क्या है? दिन दिन बढ़त जाए, यह आध्यात्मिक जीवन का लक्षण है। अगर हमारा जप करने का उत्साह दिन दिन बढ़ रहा है तो आप सोच सकते हैं कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में हो। ये बहुत विचार करने वाली वस्तु है। हाँ, हम लोग सब लोग बहुत लोग दीक्षित हैं, 16 माला रोज करते हैं, लेकिन क्या हमारा जिस दिन दीक्षा हुई थी उस दिन जो जप किया था हमने सबको याद है ना क्या जप था उस दिन? हम लोग दुनिया में थे ही नहीं, पूरा शरीर के बंधन से मुक्त होकर किसी और दुनिया में घूम रहे थे हम उस दिन। इतना उत्साह से जप किया था, जिस दिन पहले दिन गायत्री का मंत्र प्राप्त हुआ था, उस दिन जो गायत्री का जप हुआ था उसका कोई तुलना नहीं कर सकते। लेकिन क्या वही महामंत्र जो दीक्षा के लिए हम तड़प रहे थे, हाँ इतना दिन इंतजार कर रहे थे, कितनी दीक्षा का डेट डिक्लेयर हो गया, कैंसिल हो गया, डिक्लेयर कैंसिल हो गया, और फिर एक दिन वो दिन आया जिसमें हमारा नाम भी था और हम विश्वास नहीं कर रहे थे, हम बैठे थे उसके अंदर, फिर हमारा नाम भी आया, पुकारा गया, हम गए, हमने वाउज लिया, शपथ ग्रहण की और नया नाम प्राप्त हुआ, नई माला प्राप्त हुई। उसके बाद में जो जप किया ना पहली बार, उसका अनुभव लाजवाब था। लेकिन क्या उसी वही उत्सुकता हमारे में आज है क्या? या जिस दिन पहली बार हरे कृष्ण मंत्र प्राप्त हुआ था, पहली बार किसी मंदिर के माध्यम से या किसी भक्त के माध्यम से उस दिन जो अनुभव हुआ था वो सब हमको याद है, लेकिन क्या हम 10 साल 20 साल 15 साल 5 साल के बाद में उसी उत्साह को रख रहे हैं क्या? है क्या वही उत्साह कि ठंडे हो गए हम लोग सब? ये प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या हमारा उत्साह बढ़ रहा है? इज इट इंक्रीजिंग डे बाय डे? ये सब मंथन करने के लिए भी ये महीना है, क्योंकि जब भगवान अपना कृपा लुटा रहे हैं हमारे ऊपर तो हमको भी थोड़ा सा कृतज्ञ होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए, शुड बी ग्रेटफुल कि भगवान अगर बिना वजह के इतना अनंत मात्रा में आनंद लुटा रहे हैं हमारे ऊपर, इतना वरदानों को बरसाव कर रहे हैं हमारे ऊपर, क्या हम उसके लिए पर्याप्त प्रतिसाद दे रहे हैं क्या भगवान को? आर वी रिस्पॉन्डिंग टू हिम इक्वली प्रपोर्शनेटली? ये सोचना बहुत जरूरी है। वो बेचारे, उनका स्वभाव ऐसा है कि वो इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, आप कृतज्ञ भी हो जाएंगे ना, अनग्रेटफुल भी हो जाएंगे, तो उनका दया का जो स्वभाव है वो कम नहीं होता है, अनन्य दया है उनकी, कोई उसके अंदर हेतु नहीं है या उसके अंदर कोई आप ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा, ऐसा भी नहीं है, वो करुणा सागर है, वो उनकी करुणा कभी कम होती नहीं है, आप करो ना करो फिर भी उनकी करुणा बनी रहती है। ऐसा बोलते क्या वो कि अभी लास्ट कार्तिक में तो बहुत कम लोगों ने व्रत किया, इस बार कार्तिक का व्रत कैंसिल, कार्तिक का वरदान कैंसिल, इस कार्तिक में कुछ वरदान ही नहीं मिलेगा, ऐसा होता है क्या? भगवान ने इस बार नोटिस भेजा है कि लास्ट टाइम तो लोगों ने अच्छी तरह से नहीं किया था, इस बार कार्तिक में कोई व्रत का लाभ नहीं मिलेगा आपको, करो या ना करो, जो करना है करो। नहीं, वही लाभ है हर कार्तिक में, वही भक्त लोग आपको आके बताते हैं, अरे कार्तिक आ रहा है, कार्तिक आ रहा है, क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहे हो ना, मन की तैयारी करो, अभी 7 दिन में आएगा, कौन सा व्रत लेने का सोच रहे हो, व्रत का गाइडेंस देते हैं। वो भक्त लोग यात्रा बनाते हैं, यात्रा का आयोजन करते हैं, इतना बड़े पैमाने पे सब कुछ त्याग करके भगवान कैसे ना उसी और उसी से बढ़ते उत्साह से आप लोगों को, हम लोगों को ऐसा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दोबारा, आ रहा है, आ रहा है, अधिक मास आ रहा है, कार्तिक मास आ रहा है, तैयारी करो अपने, अभी झोली को बढ़ाओ, अपने साइज को बढ़ाओ, भर के लिए, भरने के लिए, भर भर के लेने के लिए। तो इसलिए ये उत्सव भी समाप्त होगा तो दुख होना चाहिए, अश्रु आने चाहिए कि मैं कल दीपदान करूंगा तो लाभ तो होगा लेकिन कार्तिक महीने का लाभ नहीं होगा। कल जो मैंने कार्तिक में जब किया था उसका हजारों लक्ष गुना लाभ जो है वो अभी नहीं मिलेगा, अगले साल तक वेट करना पड़ेगा, और क्या पता मैं अगले कार्तिक तक जिंदा रहूं कि नहीं रहूं। इसलिए हर कार्तिक को, ये मेरा आखिरी कार्तिक है, इसी भाव से उसका व्रत निभाना चाहिए। हर मेरी यात्रा जो है वो मेरी आखिरी यात्रा है, जीवन की आखिरी यात्रा है, उसी प्रकार से उसकी यात्रा करनी चाहिए। हर दिन भगवान का नाम जप करते समय ये मेरा आखिरी मौका है भगवान को, नाम को पुकारने का, ऐसे हमको जप करना है। हर होली प्लेस में जैसे सिद्धा बकुल है, अगर आप वहां गए समझो जप करने के लिए, आपको सोचना चाहिए कि पता नहीं मैं यहां पर अगली बार आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। उसी भाव से आखिरी बार करने जैसा जप वहां पर करना चाहिए। और भगवान ने दोबारा मौका दिया आपको जाने के लिए, थैंक यू वेरी मच, आपने एक बार और मौका दिया, हो सकता है ये आखिरी मौका होगा, उसी भाव से दोबारा करना है। ये स्पिरिचुअल लाइफ है, हर चीज के लिए उसी कीमत से सातत्यपूर्ण तरीके से लगातार बेसुमार वही भाव से हमको उसी चीज को अपनाना है। और सबसे अच्छा वो है कि अधिक भावना से अपनाना है, वही चीज को और प्रेम से आप स्वीकार कर रहे हो, और प्रेम से कर रहे हो, और कृतज्ञ भावना से कर रहे हो, तो फिर निश्चित रूप से हमारा यही जीवन आखिरी जीवन है। अगर हम उसको उस कीमत के भाव से नहीं ले रहे हैं तो फिर दोबारा आना पड़ेगा। जब तक भगवान का दिया हुआ नाम हमारे लिए सर्वोच्च मूल्यवान वस्तु नहीं बनेगा तब तक तो आना ही है, तब तक नहीं एंट्री होगी भगवान के धाम। इसलिए चाहे वो संध्या जागृति हो, प्रभात जागृति हो, और कोई उत्सव हो, या शाम को दीपदान का कार्यक्रम हो, 50 चीजें बना के रखी यहां पर, ये न के न प्रकार न कहीं ना कहीं लोग अटैच हो जाए उसके अंदर, है ना। अभी दोपहर को 2 बजे दीपदान रखा है, 5 को भी दीपदान रखा है, बुधवार को ये कार्यक्रम रखा है, संध्या जागृति कार्यक्रम दोपहर को रखा है, मंगलवार को फिर सुबह की प्रार्थना है, भागवत सुन रहे हैं उसके अंदर, ये हर एक गतिविधि का एक लक्ष्य गुना लाभ आपको है उपलब्ध वहां पर। आज आप प्रार्थना अटेंड की तो आपको उस प्रार्थना का श्लोक सुनने का 1 लक्ष्य बार लाभ मिलेगा। सोमवार को प्रार्थना में कहा गया था कि पृथु महाराज का चरित्र जो भी प्रेम से सुनेगा उसको संतान नहीं होगी तो बहुत सारी संतानें होगी, वो गरीब होगा तो बहुत राजा जैसा धनवान होगा, वो ही बिकम वेल्दी लाइक अ किंग, और भी बहुत सारे वरदान दिए। अभी वो श्लोक पहले भी मैंने सुना है, लेकिन उस दिन जब सोमवार को सुना तो मुझे एक अलग प्रकार का लाभ और नॉलेज उसमें प्राप्त हुआ। वो श्लोक पे मैंने प्रवचन भी दिया है, वो श्लोक मैंने 50 लोगों को भेजा है व्हाट्सएप पे कि इतना महत्वपूर्ण श्लोक है, लेकिन उस दिन फिर भी मैंने जब सुना सोमवार को वही श्लोक, उसमें अलग अनुभूति अलग नॉलेज प्राप्त हुआ। क्योंकि भगवान का विषय ऐसा है कि वो कभी भी सीमित नहीं रहता कि उसके अंदर से और क्या निकालेंगे, नहीं, वो अनंत साक्षात्कार उसमें से उत्पन्न हो सकते हैं, अनंत साक्षात्कार। एक ही श्लोक आप जिंदगी भर पढ़ेंगे फिर भी आपको कभी भी ऐसा लगेगा नहीं कि क्यों पढ़ रहा हूं मैं ये श्लोक। ऐसे भगवान का हर एक विषय है, एक प्रसाद है, उस पर भी आप चिंतन करोगे जिंदगी भर वही प्रसाद आपको अनंत साक्षात्कार देते रहेगा। ऐसे भगवान नाम है, भगवान कथा है, भगवान की वाणी है, भगवान का धाम है, भगवान का क्षेत्र है, भगवान का कथा है, संतों का संघ है, वही हमारे गुरु हैं 25 साल से। ऐसा लगता है ना अभी थोड़ा चेंज करना चाहिए, अभी कोई वही मुख से कितने बार सुनना है, बाकी सारा वैरायटी भी अवेलेबल है लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। उसी को स्पिरिचुअल लाइफ कहते हैं, सातत्य पूर्णता और दिन ब दिन वृद्धि होते जाना, ये स्पिरिचुअल लाइफ आध्यात्मिक जीवन का लक्षण है। और क्या हमारे अंदर वो हो रहा है क्या, वो हमको सब लोगों को चिंतन करना है उसके ऊपर। तो इसी जीवन में हमारा जीवन का उद्देश्य प्रयोजन जो है वो पूर्ण हो जाएगा। इन दिस वेरी लाइफ टाइम इफ वी मेडिटेट ऑन द फैक्टर दैट इज माई लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ कंटिन्यूअस एंड कंसिस्टेंट एंड इज इट ग्रोइंग डे बाई डे और नॉट, दिस मेडिटेशन विल लीड अस टू गो बैक टू गॉडेड इन दिस वेरी लाइफ टाइम ओनली। Especially for Tamil people, I spoke in English because Hindi is very sometimes heavy, you know, too difficult to digest. So, continuity and increasing joy day by day, satyatya aur din ba din ruddhi. इसलिए मेरा भाई ने कहा था दिन दिन बढ़त जाए। कब होगा वो दिन मेरा, तो मेरा भी स्पिरिचुअल लाइफ दिन ब दिन बढ़ते जाएगा, मेरा भी आनंद लगाओ आसक्ति दिन ब दिन बढ़ती जाएगी भगवान नाम के प्रति, भगवान के कथा के प्रति। कब आएगा वो दिन मेरे जीवन में जो मैं भाग कर आऊंगा उसी चीज को प्राप्त करने के लिए जो मैं 50 साल से ग्रहण कर रहा हूं, लेकिन 51वें स्माल में पहले दिन ही उसी चीज को ग्रहण करने के लिए मैं उत्साह से भाग के आ रहा हूं। उस प्रकार का आध्यात्मिक जीवन कब प्राप्त होगा मुझे, इसको नियमित रूप से चिंतन करने के लिए हमारा जीवन है। क्योंकि इस प्रकार का चिंतन हम जानवर के जीवन में नहीं कर सकते, कुत्ते बिल्ली के जीवन, पंछी के जीवन में नहीं कर सकते, केवल मनुष्य जीवन में यह सुविधा है। वो बुद्धि है, वो मनुष्य जीवन का समय है जिसमें हम लोग इस प्रकार का चिंतन कर सकते हैं, और इस प्रकार का चिंतन भी संतों की कृपा से होता है। एक और सुंदर बात कहूंगा आज की कथा कहने के पहले, कि सब हम समझते हैं कि हमारे जीवन में भगवान केंद्र स्थान में होना चाहिए, होने चाहिए, कीप कृष्णा इन द सेंटर ऑफ आवर लाइफ। लेकिन जगन्नाथपुरी की यात्रा में समापन के समय गुरुदेव के श्रीमुख से एक सुंदर साक्षात्कार प्रकट हुआ, जो नया नहीं था, वो तो एंशंट है, लेकिन उस योग्य समय पर वो प्रकट हुआ कि हम शास्त्र से समझते हैं कि भगवान हमारे जीवन के केंद्र स्थान में होने चाहिए, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं केंद्र स्थान में तब आऊंगा आपके जीवन में जब भक्त लोग आपके जीवन में केंद्र स्थान में आएंगे। He wants devotees to be in center of your life, क्योंकि उनके जीवन में उनके भक्त जो है वो केंद्र स्थान में है। तो जो आपके केंद्र स्थान में जीवन में आना चाहिए, अगर वो आना चाहिए, तो उनकी इच्छा है कि उनके भक्त केंद्र स्थान में आने चाहिए, तभी वो आएंगे। इस तरह से चैतन्य चरितामृत जो है वो इसी बात को जताने के लिए है कि भगवान के भक्तों का जीवन जब आपके लिए सर्वोच्च हो जाएगा, उनकी खुशी, उनकी सेवा, उनका अच्छा लगना बुरा लगना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो भगवान स्वतः ही अपने आप ही आपके जीवन में केंद्र स्थान में आ जाएंगे बाय डिफॉल्ट। पूरा चैतन्य चरितामृत भगवान ने इसने रचा हुआ है, सारी लीलाएं यही दिखाने के लिए हाउ डिवोटीज आर सो इंपॉर्टेंट। किसी भक्त की कृपा के बिना भगवत कृपा नहीं प्राप्त हो सकती है, ये बात को कितनी सुंदर तरीके से चैतन्य चरितामृत में अनेक बार उसका साक्षात्कार होता है। तो ये हमारा भाग्य है कि ऐसे परमोच्च साक्षात्कारों से हमारा परिचय किया जा रहा है। योग्यता ना होते हुए भी ऐसे परमोच्च साक्षात्कार, ऐसा परमोच्च भगवान नाम का महिमा का परिचय हमको दिया जा रहा है। तो उसी को उसी भावना से ग्रहण करना, और कार्तिक महीने जैसे सर्वोच्च व्रतों को उसी उमड़ते हुए भाव से स्वीकार करते रहना, उस पर चिंतन करते रहना, इस भाग्य को जीवन में अपनाना हमारा परमोच्च कर्तव्य है। तो भी कार्तिक महीना बहुत ही अनोखी लीलाओं से भरा हुआ है, खास करके भगवान की बाल लीलाओं से वो भरा हुआ है पूरा। भगवान का रेंगना गौशाला में, पेट के बल पर गाय का पूछ पकड़ के चलना, माखन चोरी करना, आंगन में डोलना, देवता लोग तरसते हैं, भगवान को देख रहे हैं, नंद महाराज के आंगन में रेल रहे हैं, रेंग रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं सामान्य बालक की तरह। साक्षात परब्रह्म जो है बालक बनकर नंद महाराज को आनंद देने के लिए उनके आंगन में रेंग रहे हैं, फिर माखन चोरी कर रहे हैं, तुतले तुतले बोल रहे हैं, चलने को सीख रहे हैं, बोलने को सीख रहे हैं। इति दृक्स्व लीला भीर आनंद कुंडे स्वगोषम निमाज्जंतम आख्यापयंतम। डुबो दिया उन्होंने सारे ब्रजवासियों को अपने मधुर बाल लीलाओं के माध्यम में, पूरा डुबो दिया, कुछ रखा ही नहीं बाकी, कुछ दुख कुछ बचा ही नहीं उनके जीवन में, परम आनंद के सागर में डुबो दिया उन्होंने। तो फिर भगवान की गोपाष्टमी की लीला, भगवान ने गायों का जिम्मेदारी ग्रहण किया इस महीने में, अभी अष्टमी गई ना 16 तारीख को, उस दिन गोपाष्टमी थी, उस दिन भगवान ने बड़े गायों को चारना शुरू किया, और अभी कार्तिक पूर्णिमा आएगी। कार्तिक पूर्णिमा का दिन भगवान ने रास रचाया, कार्तिक पूर्णिमा भगवान का रास लीला का दिन है। शरद पूर्णिमा से आरंभ हुआ और फिर जो लगातार सिलसिला चलता रहा, ब्रज के रज के हर एक कर्ण पे रास लीला हुई है भगवान की। तो जब भी पूर्णिमा का चंद्र आता है, भगवान और गोपियां उद्युक्त हो जाती है और उनका दिव्य मिलन होता है, और एक एक रात में एक एक ब्रह्मा जी की रात भगवान ने समाकर गोपियों को आनंद दिया है। 432 कोटि साल का समय एक रात्रि के 12 घंटे के साल में समाविष्ट करके भगवान ने गोपियों को यह दिव्य आनंद दिया है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी विवाह का प्रसंग आता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यशोदा देवी कृष्ण के लिए गर्भवती हो गई थी। उसकी कहानी में पहले आपको बताता हूं। आप जानते हैं कि नंद बाबा बहुत बुजुर्ग हो गए थे, वृद्ध हो गए थे, उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। वृषभानु को भी संतान नहीं हुई थी। तो दोनों ने निर्णय लिया कि चलो अभी चलते हैं, यमुना के किनारे जाकर रहते हैं, वहां पर यमुना के सहारे से शायद संतान प्राप्ति हो सकती है। फिर भी वहां पर गए, भी 85 ईयर्स की उम्र हो गई। तो नंद बाबा एक दिन जा रहे हैं स्नान करने के लिए यमुना जी में, और रास्ते उस दिन थोड़ा देर हो गई उनको जाने के लिए, ऐसे लिखा है शास्त्र में। और उस दिन उस समय सारे संत लोग जो थे ना, जितने महात्मा जन थे, वो भी अपने कुटिया के बाहर बैठकर दातून कर रहे थे। वहां पर इस शब्द का प्रयोग किया गया है, वो सब प्रभाती कर रहे थे। बहुत सुंदर शब्द है प्रभाती का, मतलब सारे जो भी दातून कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसको प्रभाती कहते हैं। सर प्रभाती कर रहे थे, तो वो सब साथ में कर रहे थे अपने अपने कुटी के सामने रास्ते में बाजू में, और नंद बाबा गुजर रहे थे। सब लोग ने उनको आशीर्वाद दिया एक मुख से, पुत्रवान भव, आपको पुत्र हो जाए। तो नंद बाबा हंस पड़े कि आपने आशीर्वाद दिया है, लेकिन तो वही तो उम्र थोड़ी है पुत्र प्राप्ति की। तो साधुओं ने जो एक मुख से एक वाक्यता से आशीर्वाद दिया, उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज ऐसा क्या हुआ कि हम सब लोगों को एक मुख से आशीर्वाद देने का इच्छा हुआ। लेकिन वो थोड़े से टेंशन में आ गए कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद अगर फेल हो गया तो लोगों का, ब्राह्मणों की श्रद्धा ही खत्म हो जाएगी। तो सब लोग अपने गुरु के पास गए, शांडिल्य मुनि के पास, और उन्होंने कहा कि आज ऐसा ऐसा प्रसंग हुआ कि हमने उनको एक मुख से आशीर्वाद दिया, और उन्होंने भी प्रश्न किया कि ऐसे कैसे हो सकता है, और हम भी परेशान हो गए, अभी उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। लेकिन हमने उनको ऐसे ही बोल दिया कि ब्राह्मणों के मुख से आया है तो वो सच होगा, लेकिन अभी हमको थोड़ी चिंता है कि नहीं सच हुआ तो कैसे होगा। तो शांडिल्य मुनि ने कहा कि अभी इसका एक ही उपाय है, आप 18 कोटि गोपाल मंत्र यज्ञ करो। 18 कोटि गोपाल मंत्र का उच्चारण करके आहुति अर्पण करो गोपाल यज्ञ का, फिर उसके पश्चात भगवान आप लोगों का वाक्य जो है वो परिपूर्ण करेंगे। तो सभी ब्राह्मणों ने, गोकुल के ब्राह्मणों ने मिलकर गोपाल यज्ञ किया, 18 कोटि जप करके आहुति अर्पण की। और जब आखिरी आहुति अर्पण की गई तो उसमें यज्ञ कुंड से नील तेज निर्माण हो गया, और वो नील तेज आकाश में गया और वो कृष्ण रूप बन गया। फिर वो तेज नंद बाबा के हृदय में प्रवेश किया, फिर वो हृदय में कुछ समय निवास करके फिर वो यशोदा देवी के हृदय में समाविष्ट हो गया। फिर वो तेज यशोदा के गर्भ में श्री कृष्ण के रूप में स्थिर हो गया। इस तरह से कार्तिक पूर्णिमा के दिन उनकी गोपाल यज्ञ आहुति पूर्ण हुई, और इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन यशोदा माता गर्भवती हो गई। अभी आप कार्तिक पूर्णिमा से गोकुलाष्टमक दिन गिनिए, आपको पता चलेगा एग्जैक्ट प्रेगनेंसी पीरियड है वो। कार्तिक पूर्णिमा से अभी अगले महीने की तिथि को आप श्रावण मध्य अष्टमी को गिन लीजिए, कितने दिन होते हैं, परफेक्ट प्रेगनेंसी है वो। उसी समय वहां पर देवकी भी गर्भवती हो गई। लेकिन कृष्ण का ब्रज में प्रवेश माता के गर्भ में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ। कितनी सुंदर बात है। उसी दिन तुलसी का विवाह होता है। अभी उसकी कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में आती है, बहुत लंबी कथा है, हम संक्षेप में बताएंगे आपको। तुलसी के वृंदा देवी नाम की जो गोपी है वो गोलोक वृंदावन में भगवान की बड़ी प्रिय सखी है, और बड़ा विशेष स्थान है उसका। राधा रानी बहुत परमोच्च सखी है भगवान की, उनकी 8 सखियां भी परमोच्च सखियां हैं, और उसके बावजूद भी उनकी जो वृंदा देवी सखी है वो बहुत विशेष सखी है। तो एक दिन वो वृंदा देवी के साथ एकांत में थे तो राधा रानी को अच्छा नहीं लगा, तो राधा रानी उसको शाप दे दिया कि आप भौतिक जगत में जन्म लोगे। अब आप कहेंगे अरे इतने बड़े लोग भी ऐसा तड़पते हैं क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब उनकी लीला है हमारे ऊपर कल्याण करने के लिए। कभी कभी सामान्य जीव की तरह वो वर्ताव करते हैं, लेकिन उसका परिणाम जो है वो हमारे ऊपर अनंत कृपा का निधान है। तो फिर वृंदा देवी को यथावकाश धर्मध्वज नाम के राजा के गर्भ के अंदर जन्म लेना पड़ा। और तब जब उनको ये शाप दिया गया तो राधा रानी ने उनको वरदान भी दिया कि कृष्ण भगवान ने मिलकर कि आगे जाकर नारायण से आपका विवाह होगा। लेकिन भाव और भक्ति जो है कृष्ण के प्रति है, तो भगवान की लीला के लीला को क्या कहते हैं, जो सहभाग करने के लिए वृंदा देवी का जन्म हुआ पृथ्वी पर और उन्होंने तपस्या किया नारायण की प्राप्ति के लिए। फिर नारायण प्रकट हो गए, उन्होंने कहा कि आपका एक प्रयोजन और है मेरे साथ विवाह होने के पहले, शंखचूड़ नाम के दानव से आपको विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि उसने भी आपके सौंदर्य को देखकर ये इच्छा की थी कि वो आपकी पत्नी बन जाए, वो पति बन जाए आपके। तो वो भी गोलोक के जो मेरे सखा हैं, भगवान कह रहे हैं सुदामा, वो भी यहाँ पर अभी शंखचूड़ नाम के राक्षस बन के आए हुए हैं। कश्यप मुनि की पत्नी दानू, दानू के पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ है शंखचूड़, और वो भी तपस्या कर रहे हैं। तो आपको कुछ समय के लिए उनकी पत्नी के रूप में रहना होगा, वो लीला समाप्त होने के बाद में आपका मेरा विवाह होगा। ऐसे करके फिर भगवान ने सांत्वना की है और अनंत गुणों के अंतर्भाव होने की वजह से इस देवी का नाम तुलसी रखा गया, धर्मध्वज की कन्या का, और यथावकाश शंखचूड़ का उसका विवाह हुआ। और शंखचूड़ को भी वरदान था कि तुम तुलसी के साथ विवाह करके पातिव्रत्य के बल से शंखचूड़ को अजेय बना दोगे, आपके पतिव्रता होने की वजह से शंखचूड़ पराजित नहीं हो सकता किससे, आपके पातिव्रत्य का कवच उसके ऊपर बना रहेगा, जो किसी भी देवता का शस्त्र उस पर नहीं चलेगा और हमेशा देवता उसे भयभीत रहेंगे। उसने भगवान से भी वरदान मांगा था, जब वो भगवान प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी को वरदान मांगा था कि मुझे ऐसा सर्व मंगलमय कवच दे दो आप, उसका नाम था सर्व मंगलमय, जो किसी का शस्त्र अस्त्र मुझ पर प्रभाव नहीं करेगा और सारे देवता मुझसे भयभीत रहेंगे। तो देना पड़ा उसकी तपस्या को देखकर। और जानते हैं ना आप, जैसे ही राक्षस लोगों को कोई वरदान प्राप्त होता है तो उसका अहंकार बढ़ जाता है, भक्तों को जब वरदान प्राप्त होता है तो और नम्र हो जाते हैं और अपने वरदान का लाभ सब दूसरे भक्तों को देते हैं। राक्षस लोग जैसे ही वरदान प्राप्त करते हैं उनका अहंकार करके सबको त्रस्त त्रस्त कर त्राही त्राही करके छोड़ देते हैं। तो वही हुआ, सब देवताओं को आक्रमण कर करके राज्यहीन कर दिया उसने। सब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी उनको लेके कृष्ण के पास गए, उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने कृष्ण भगवान ने शिव जी को त्रिशूल प्रदान कर दिया उस समय और कहा कि त्रिशूल को लेकर आप आक्रमण करो उसके ऊपर। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने तो वरदान दिया है कि उनको जो कवच प्राप्त है उससे मेरा त्रिशूल का कुछ परिणाम नहीं होगा। तो बोले कोई बात नहीं, मैं आके उस कवच का भी इंतजाम करूंगा, उसका भी इलाज करूंगा। तो अभी अभी हार के देवता लोग आए थे, परेशान होकर पहुंचे थे वहां पर, तो उनको दोबारा आदेश मिला कि दोबारा आक्रमण करो। जैसे वो थे ना, क्या नाम उनका, सुग्रीव है ना, इतने बार पीट कर आए थे वो पीट मार कर मार खा कर आए थे, अब भगवान कह रहे हैं जाओ दोबारा उसको आक्रमण आह्वान दे दो। फिर भगवान अभी तो मैं हड्डी तोड़कर आया हूँ, अभी दोबारा मुझे बोल रहे हैं आप, तो डोंट वरी मैं हूं ना अभी बाण लेकर आऊंगा। उस बार भी इतना पिटवाया भगवान ने उसको, वो घर पे आया परेशान होकर, पूरा चूर चूर होकर आया, भगवान आपने तो बाण चलाया नहीं, क्या मजाक कर रहे हैं आप खड़े थे बाण, मैं तो आपके बलबूते पर आह्वान देके गया, तारा ने भी कहा था आह्वान दे रहा है, बोले कोई बात नहीं मैं जाऊंगा। और तो बाली ने आक्रमण किया उसके ऊपर, तो भगवान ने भी उसको थोड़ा तड़पाया। हाँ, क्या कहते हैं उसको, टू मेक हिम मोर इंटेंसली डिजायरेबल फॉर द मर्सी, थोड़ा सा पेमेंट देना पड़ा उसको उसका, फिर माला पहनाई उसको, ठीक है अभी मैं पहचान पाऊंगा कि तुम कौन हो और वाली कौन है। ऐसे बहुत सारे बच्ची से बताई, लेकिन उसमें पर्पज है भगवान का। तो वैसे अभी अभी पीट कर आए हैं देवताओं दानु से, संकर्षण शंखचूड़ से, तो दोबारा अभी बोल रहे हैं तो दोबारा फिर आप भगवान की इच्छा है तो आक्रमण करते हैं। और वैसे ही हारने लगते हैं बहुत जोरदार तरीके से, जैसे पहले हार चुके हैं। तो शिव जी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। फिर भगवान यहां पर शंखचूड़ का भेष बनाकर तुलसी के घर पे आते हैं। हाँ, वही है वो सेम। तो आकर फिर वो कहते रहे, भगवान तो नहीं, मेरे पति तो युद्ध जीत कर आए हैं, बड़े विजयी भाव से आए हैं, और वो पूछते युद्ध में क्या क्या हुआ, तो वो अच्छा वर्णन करते कि मैंने कैसे देवताओं को परास्त किया, कैसे शिव जी को भगा दिया, कैसे उसको भगा दिया, कार्तिकेय को भगा दिया, काली को भगा दिया। तो बड़े प्रसन्न होकर उनका स्वागत करती है, चरण धोती है, चरण प्रक्षालन करती है, उनको भोजन कराती है, फिर उनका संग होता है। और जैसे ही उनका संग होता है अचानक शिवजी का त्रिशूल जो उसके गले में अटक जाता है और कवच भी नष्ट हो जाता है। उसको भी आश्चर्य होता है, क्या हो गया वृंदा देवी, क्या हो गया तुलसी, क्या हो गया। तो तुलसी वो आवाज सुनती है अपने पति का, पुकार रहे वो, तुलसी क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, ऐसे कैसे हुआ। तो तुलसी कहते, अरे बाहर से भी पति की आवाज आ रही है, साथ में भी पति है मेरे, क्या ये चक्र है। बाद में उसको वो अनुभूति हुई कि जिस प्रकार से हमारे प्रेम का आदान प्रदान हुआ करता था वो कुछ डिफरेंट था इस टाइम पे। तो तुरंत समझ में आया कि मेरे साथ छल किया गया है। तो जिस नजर से उसने पास में बैठे हुए शंखचूड़ यानी विष्णु को देखा, तो विष्णु अपना रूप शंखचूड़ का बनाए रखना नामुमकिन हो गया उनके लिए। ही कुड नॉट मेंटेन हिज फॉर्म एज शंखचूड़, तुरंत विष्णु के रूप में प्रकट हो गए वो। और वहां से कटा हुआ सर आया तो समझ गई वो कि छल हुआ मेरे साथ। तो उसमें बहुत सुंदर वर्णन है, वो बहुत लंबा है, उनका आदान प्रदान संवाद हुआ है। संक्षेप उसका यह है कि ये आपका पृथ्वी का लीला था, वो आपको करना ही था, और पतिव्रत्य धर्म का जो गौरव है वो यहां पर प्रकट हुआ है कि पति कितना भी दानव होगा, राक्षस होगा, व्यसनी होगा, फिर भी अगर पत्नी अगर पतिव्रता है तो केवल पातिव्रत्य के उसके बल से पति सुरक्षित रह सकता है, और उसी पातिव्रत्य के धर्म का पालन करके पत्नी ब्रह्मा लोक तक प्रवेश कर सकती है। शास्त्र का विधान है ये। पुरुष भी केवल ब्रह्मचर्य का पालन करके, भक्ति भक्ति छोड़ दो, केवल ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करके ब्रह्मा लोक में प्रवेश कर सकता है। और अगर इस पातिव्रत्य और ब्रह्मचर्य को भक्ति की जोड़ दी जाए तो सीधे गौलोक वृंदावन, दोनों के लिए, पत्नी के लिए और पति के लिए। इसलिए कभी भी विचलित होकर हमारा पातिव्रत्य और ब्रह्मचर्य का धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए, उसमें विश्वास रखे बनाए रखना, कठिनाई आएगी बहुत। तो इस प्रकार से फिर भगवान ने, तो वध तो हो गया, उसको बता दिया को दानव था तो उसका वध तो होना ही था किसी भी तरह से। तो भगवान को उसने शाप दिया, उसके जैसे गांधारी के नजर में शक्ति थी ना, देखा गांधारी ने अपनी पट्टी खोली, जैसे नजर पड़ी दुर्योधन के शरीर पर तो पूरा वज्र हो गया पूरा, वो इतनी शक्ति होती है पतिव्रता नारी के नेत्रों में। एक बार पट्टी खोली और एक बार पट्टी खोलकर पूरा शरीर वज्र बना दिया। वो मूर्ख था व्यक्ति, उसने कमर पे पट्टा बांध दिया, नहीं तो वो भी वज्र हो जाता, उसका वध नहीं होता। कहने का तात्पर्य जैसे गांधारी के नजर में नेत्रों में इतनी शक्ति थी, वैसे ही शक्ति तुलसी देवी की थी, जिसके प्रभाव से भगवान अपना भेष छल जो है वो बनाए रखना मुमकिन नामुमकिन हो गया उनके लिए, तुरंत उनको मूल स्वरूप में आना पड़ा। वैसे राधा रानी के नेत्रों में उतनी शक्ति है कि भगवान विष्णु बनकर खड़े दरवाजे पर अपने वन में, हाँ वो एक छली कर रहे हैं। तो जैसे राधा रानी ने जब देखा उनको तो उनके नेत्रों में इतना प्रेम था कि उस प्रेम के प्रभाव से भगवान चतुर्भुज रूप भी नहीं बना सके, अपना छोड़ना पड़ा, पिघल गए उनके दो आम, शंख चक्र पद्म गदा भी गायब हो गए, और दो भुज के कृष्णा के रूप में प्रकट होना पड़ा उनको। यह है प्रेम और क्या कहते हैं उसको, चैस्टिटी का प्रभाव। हमारे भी इष्ट जो है ऐसे हमारे, हम उनके लिए एक एकाग्र होने चाहिए। एकले कृष्ण, एकले भगवान कृष्ण, आर सब अवृत्य। इस तरह से हमारा भी श्रद्धा जो है वो एक पॉइंट पे होना चाहिए, जैसे इन सभी महान भक्तों का है। तो भगवान ने उसको, तुलसी ने पहले उनको शाप दे दिया कि तुम पत्थर की तरह क्या कहते हैं इनसेंसिटिव बनकर मेरे साथ तुमने छल किया है, तो तुम्हें पत्थर बनना चाहिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आपकी आपका शब्द प्रमाण होगा यानी सिद्ध होगा। अब ये शरीर जो है जो आपने इस लीला में यूज किया था उसको आप त्याग दो, उस शरीर के बालों से यहां पर तुलसी का पौधा उत्पन्न होगा, और आप इस शरीर को नष्ट होने के बाद नदी रूप बनोगे, गंडकी नदी, और आपके आप जहां बहोगी उसके पास मैं पत्थर बनकर, पर्वत बनकर जन्म लूंगा, और मेरे पर्वत में वज्रकीट नाम का एक कीटक होगा, पर्वत में, वो दिन रात काट काट कर शिलाएं बनाएगा, और वो शिलाएं जब अंदर से अलग प्रकार से बनी जाएगी तो वो फिसल कर आपकी नदी में गिरेगी। जैसे ही आपकी नदी में गिरेगी उनको मेरा स्वभाव प्राप्त हो जाएगा, उसका नाम शालिग्राम होगा। और वो जो पत्थर वहां से बनकर निकलेंगे और किनारे में पड़ेंगे वो ब्राउन रंग के हो जाएंगे, वो पूजा करने लायक नहीं हो जाएंगे। जो आपके जल में गिरेंगे वो शालिग्राम नाम से प्रसिद्ध होंगे और पूजनीय होंगे। और आपका मेरा विवाह होगा और विवाह में भी मैं आपके चरणों में शालिग्राम के रूप में विराजमान रहूंगा। आपने मुझे श्राप दिया है पत्थर बनने का, मैं पत्थर जरूर बनूंगा लेकिन आपके पत्थर बन के आपके चरणों में रहूंगा। इसलिए शालिग्राम जी हमेशा कहाँ रहते हैं, तुलसी जी के वृंदावन में उनके चरणों में रहते हैं, और उनका विवाह कार्तिक पूर्णिमा में होता है। तो इतना सुंदर भगवान का भाव है कि हर किसी अच्छे या बुरी दिखने वाली चीजों में से भगवान ऐसा सुंदर सुंदर दिव्य चीजों को प्रकट करते हैं। इस लीला के माध्यम से भगवान ने शालिग्राम के रूप में अपने रूप को प्रकट किया पृथ्वी लोगों के आनंद के लिए। और इसकी विशेषता यह है कि इतना वो चिकना होता है बाहर से और उसके अंदर में सांप डिजाइन होता है। तो वज्रकीट कहाँ होता है, वो पत्थर के अंदर होता है, वो पत्थर से अंदर से वो पत्थर को काट 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 कर उसका वो अंदर डिजाइन बनाता है। तो उसके हिसाब से लक्ष्मीनारायण भगवान ने पूरा ब्रह्मवर्त पुराण में वर्णन दिया है कि ऐसा होगा तो लक्ष्मीनारायण शिला होगी, ऐसा होगा तो दामोदर शिला होगी, ऐसा होगा तो संकर्षण शिला होगी, ऐसा शिला होगा तो गोपाल शिला होगी, पूरा वर्णन दिया है। फिर तुलसी जी को कहा कि जहां पर आपके बालों की वजह से पौधे पैदा होंगे उस पौधों के जो पत्ते हैं वो इतने इतने महान होंगे कि जो भी व्यक्ति उस पत्ते को जीवन के अंत में अपने मुख में अपने शरीर पर पाएगा वो सीधे गोलोक धाम चला जाएगा। और कई सारे वरदान दिए कि आपके पौधे का हर एक अंग मेरे सेवा में रहेगा, आपका पौधा अद्भुत रहेगा, किसी भी अन्य पौधे के साथ मिलता जुलता नहीं रहेगा। उसके तो पूरा लंबा वर्णन दिया है कि जो तुलसी का पत्ता हाथ में रख के कोई वचन कहेगा और उसको नहीं पालेगा तो वो नरक में चला जाएगा, और तुलसी का हाथ पत्ता हाथ में रख के जो वचन कहेगा उसको पालन करेगा तो मेरी भक्ति और प्रेम प्राप्त करेगा। जो तुलसी का जल ग्रहण करेगा यानी तुलसी का पत्ता जिस जल में स्पर्श हो चुका है उसको विश्व के सारे नदियों का जल को प्राशन करने का लाभ मिलेगा। यानी कि जैसे ही जल तुलसी का जल दल जल को स्पर्श करता है उसी स्पर्श के माध्यम से विश्व की सारी पवित्र नदियां जो है वो उस जल में प्रवेश करती हैं। तो रोज आप सारे नदियों का जल प्राशन कर सकते हो घर में बैठ के। आप एक ग्लास पानी लीजिए तुलसी का पत्ता डाल दीजिए और दिन भर उसको पीते रहिए। आपके पानी की बोतल है तुलसी का पत्ता डाल दीजिए और दिन भर वो पानी पीते रहिए। फिर बोतल भरिए तुलसी का पत्ता है तो अच्छा है दूसरा पत्ता डाल दीजिए। इतनी महिमा है उसकी। जिसके छाती पर मृत होने के पश्चात भी तुलसी का काष्ठ रहेगा, काष्ठ यानी वो स्टेम, और उसी में उसमें दाह संस्कार किया जाएगा तो कोई यमराज का दूत उसको छू नहीं सकता है और सीधे गोलोक धाम में उतरी यात्रा होगी। ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं, ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान स्वयं बोल रहे हैं। इसलिए किसी भी कीमत पर किसी भी व्यक्ति को आप प्रेम करते हो और उसको मृत हो गया है तो ये देखना कि उसके छाती पर तुलसी का काष्ठ होगा जब उसका देहांत का संस्कार किया जाएगा। ज्यादा कुछ करना नहीं, मेक श्योर दैट दिस शुड नॉट बी रिमूव्ड। तुलसी का स्पर्श होने पर अगर किसी व्यक्ति को नरक जाने का भी योग्यता होगी तो नरक के दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं जैसे ही तुलसी का स्पर्श उसको हो जाता है। क्या क्या कहें तुलसी के बारे में, औषधि गुण तो छोड़ ही दीजिए, वो तो अनंत लाभ है उसके। आध्यात्मिक लाभ जो है वो इतनी प्रिय है, वो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे पत्ते के स्पर्श की बिना 56 भोग भी ग्रहण नहीं करूंगा। सारे 56 भोग मेरे लिए मूल्यवान तब बनेंगे जब आपका स्पर्श उसको होगा, तभी मैं उसको ग्रहण करूंगा। और कोई अगर मुझे बहुत अनन्य भाव से भी अगर अनंत भोग अर्पण करेगा तो आपके होते हुए मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। आई डोंट केयर फॉर दोज मिलियंस ऑफ ऑफरिंग्स अगर आपका तुलसी का पत्ता उस पर नहीं रहेगा। कितना सम्मान दिया है भगवान ने। और यही तुलसी देवी वृंदा देवी के रूप में भगवान के धाम में बहुत सुंदर सेवा करती है। वो सेवा यह है कि वृंदावन धाम में यही तुलसी देवी जो वृंदा देवी गोपी है वो भगवान के लीलाओं के आयोजक हैं। जितनी भी लीला भगवान की होती है ब्रज में वो तुलसी के निर्देशन में होती है। तुलसी के पास 1000 तोता हैं और हर एक तोता के पास हजारों सेवक हैं, और वो रोज तुलसी के निर्देश के अनुसार पूरे ब्रज में क्या स्थिति है उसका ब्यौरा निकालते हैं, अहवाल, और तुलसी को सबमिट करते हैं। कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर कहाँ पर मुठभेड़ हो गई, कहाँ पर गाड़ी चली, कहाँ पर आंदोलन हुआ, कहाँ पर शोर मचाया, कहाँ पर रोड ब्लॉक हो गया, वो सब नहीं। कहाँ पर कौन से रंग के फूल खिले हैं, कौन सी हवा चल रही है, पेड़ में कौन सा रंग है, हाँ क्या क्या, कौन सी गंध आ रही है, कौन सी हवा बह रही है, कौन सा दृश्य है, कौन सा रंग है, कौन सा ऋतु है, इस प्रकार का दिव्य प्रकार का सूक्ष्म अहवाल देते हैं वो। और फिर उसके अहवाल के अनुसार वृंदा देवी ललिता विशाखा के निर्देश में उनके साथ डिस्कस करके तय करती है कि आज की लीला कहाँ होगी। और फिर वो वन में हर जगह पर उनके स्टोर हाउसेस हैं, सब है उधर, किचन है, ड्रेसेस है, ऑर्नामेंट्स है, क्या चाहिए आपको, सब कुछ है उधर। और सबसे ये तुलसी देवी के जो असिस्टेंट्स है वो सब पेड़ों से, पौधों से, पंछियों से बात करते हैं कि उनको आज किस राग में गाना है, कौन से प्रकार के फूलों को प्रकट करना है, कितने प्रकट करना है, कितना झुकना है नीचे तक, कौन सा सड़ा यानी कि क्या कहते हैं वर्षाव करना है, हर प्रकार का, कौन से राग में आज गीत गाना है, कौन से ताल में नृत्य करना है, कौन से वाद्य बजाना है, कौन बजाएगा, कौन चामर सेवा करेगा, कौन हारमोनियम बजाएगा, कौन कंगन बजाएगा, कौन घुंघरू से ताल उत्पन्न करेगा। मेन तो वहां पर घुंघरू और कंगन ही होते हैं, बाकी सब तो असिस्टिंग वाद्य होते हैं। मेन जो प्रधान वाद्य है वो गोपियों का कंगन और पायल, और तीसरा भगवान की मुरली, इससे मेन सिंफनी बनता है, बाकी सारे असिस्टेंट होते हैं। ये सारा विस्तार से आयोजन वृंदा देवी करती है, क्या व्यंजन बनेंगे, किस वक्त कौन से व्यंजन दिए जाएंगे। और फंक्शन 2 घंटे का नहीं है, फंक्शन सूर्यास्त से सूर्योदय तक का है, उसमें कितने ऑफरिंग हो जाएंगे, कहाँ कहाँ कौन से ऑफरिंग, कौन कौन बनाएगा, कौन सर्विस करेगा, चरणों को मालिश कौन करेगा, शाम का गीत कौन गाएगा, बीच रात का गीत कौन गाएगा, लोरी कौन गाएगा, उठाने का गाना कौन गाएगा, ये सारा चीज जो है वो वृंदा देवी तय करती है, मेटिकुलस प्लानिंग होता है उसके अंदर। और फिर कौन राधा का श्रृंगार करेगा, कौन कृष्ण का श्रृंगार करेगा, और कौन उनको लेकर आएगा, कहाँ से आएगा, कहाँ से एंट्री होगी, उस गेट पर कौन खड़ी रहेगी उनको स्वागत करने के लिए, अंदर वेलियों को उठाने के लिए कौन रहेगा, वेलियों को उठाते उठाते अंदर ले कौन जाएगा, पुष्पशैया कहाँ बनेगी, क्या बताएं आपको, इतना सुंदर विस्तारपूर्वक आयोजन वृंदा देवी करती है। और वो केवल एक दिन साल में नहीं होता, एनुअल डे नहीं होता वो, एवरी डे होता है वो, एवरी सिंगल डे। बढ़ते हुए हर रोज वृद्धिंगत होते हुए आनंद से उसका आयोजन किया जाता है, दिस स्पिरिचुअल लाइफ, वृंदावन लाइफ। उसका हेडक्वार्टर्स वृंदा कुंड में है, वहां पर उसका ऑफिस है, वहां पर सारा डेटा जो है ना वो प्रोसेस करते हैं कि आज क्या करना है। और वहां पर 2 कुंड है, एक वृंदा कुंड है, एक गुप्त कुंड है। वृंदा कुंड में सबके साथ मिलने का कभी कभी आयोजन होता है उनकी इच्छा के अनुसार, और गुप्त कुंड में कोई नहीं मिलता है, केवल राधा और कृष्ण। वृंदा देवी केवल उनको लेकर जाती है और छोड़ देती है उनको, सब लोग चले जाते हैं वहां पर, उसके बाद में केवल राधा और कृष्ण वहां मिलते हैं गुप्त कुंड। इतने सुंदर पंछी आज भी वहां पर है, इतना सुंदर बोल बोलते हैं वहां पर, खाली बैठना है आपको जाके शांति से, और सारे पक्षी जो है ना सुंदर सुंदर गीत गाते रहते हैं भगवान के आनंद के लिए। ऐसी वृंदा देवी इतनी प्रिय है भगवान को, और राधा रानी को भी इतनी प्रिय है कि ब्रह्मवैवर्त में और एक कथा आती है जिसमें कृष्ण भगवान की अनन्य कृपा प्राप्त करने के लिए राधा रानी ने वृंदा देवी का पूरा व्रत किया है। वृंदा देवी सिंहासन पर बैठ के प्रकट हुई है और राधा रानी ने उसका आशीर्वाद लिया है, ये भी लीला है। और राधा रानी को वृंदा देवी, अभी सब लीला है, एक तरफ वृंदा देवी आशीर्वाद ले रही है, एक तरफ राधा रानी आशीर्वाद ले रही है, सब चलते रहता है। एक जगह राम भगवान शंकर को प्रस्थापित कर रहे हैं रामेश्वर के रूप में, उनका पूजन कर रहे हैं, एक जगह शंकर भगवान का पूजन कर रहे हैं, भगवान शंकर का पूजन कर रहे हैं, ये सब चलते रहता है। भगवान भक्त की पूजा कर रहे हैं, भक्त भगवान की पूजा कर रहे हैं, ये स्पर्धा निरंतर चलती रहती है। तो राधा रानी परमोच्च सखी भगवान के होने पर भी वृंदा देवी का व्रत कर रही है, उसका आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। उसके बाद में कृष्ण का दर्शन राधा रानी को हुआ है, ऐसा भी वर्णन है। तो ये राधा रानी को इतनी प्रिय है वृंदा देवी कि राधा रानी ने स्वयं अपने हाथ से वृंदा देवी का विवाह कृष्ण से किया है, और जो खुद का वन है वो वृंदा देवी को भेंट में दिया उन्होंने, इसलिए उसका नाम वृंदावन है। तो वृंदा देवी को दे दिया उन्होंने, सबसे प्रिय वन जो है भगवान का, 137 वन में 108 वन, 108 में 12 वन, 12 वन में सर्वोच्च वन जो है वृंदावन, जिसका वर्णन कितने पुराणों में अनन्य वर्णन किया गया है, उस वृंदावन को भगवान के लिए राधा राधा रानी ने वृंदा देवी को भेंट दी है उसकी। तो ये सभी वृंदा देवी के महात्म्य को प्रकट करता है, और हमारे लिए क्या महात्म्य उसका, यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्यादि कानी च, तीन बार प्रदक्षिणा करने से ब्रह्म हत्या तक का पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में, वैष्णवों के जीवन में वृंदा देवी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये तुम्हारा शरण लोए तार वांछा पूर्ण होए, कृपा करी करो तारे वृंदावनवासी, इन्हीं की कृपा से सिर्फ ब्रज के रस की, प्रेम की और भक्ति की प्राप्ति होती है, इन्हीं की कृपा से। इसलिए इनकी शरण जाना और इनकी शरण में उनकी दासी बनकर रहना, उनसे प्रेम भक्ति की आराधना इच्छा प्रकट करना, ये भक्ति के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो आइए सब लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री वृंदा देवी का स्मरण करें। विवाह का उत्सव वरदा गिरधारी मंदिर में बहुत जोरदार संपन्न होगा और आप लोग उसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन वो तो एक लीला है, उत्सव है, लेकिन वृंदा देवी को किस तरह से अपने जीवन में हम स्वीकार करेंगे उस पर हमको चिंतन करना है। हर एक वैष्णव के घर में वृंदा देवी तुलसी के पौधे के रूप में उपस्थित होनी चाहिए, उसके बिना हम भक्ति भी नहीं कर सकते, भगवान को भूख भी लगा सकते, यहाँ से शुरू होता है और आगे जाकर वृंदावन वास, प्रेम भक्ति की प्राप्ति, कृपा प्राप्ति, सेवा प्राप्ति और सब इन्हीं की कृपा से होती है। श्री वृंदा देवी की, सब लोग मेरे बात बोलिए एक बार, वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृंदा देवी की, कार्तिक मास महोत्सव की। तो उम्मीद है कि अगले दो दिन आप हजारों गुना उत्साह के साथ कार्तिक व्रत को निभाएं और भगवान को वंदन करके, भगवान के भक्तों को भोजन करा के अपने व्रत की समापन करें। श्री दामोदर मास की जय।